તારીખ 10/10/1994 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 82.
कमी नहीं है, हमारा पुरुषार्थ विपरीत चलता है, ये पुरुषार्थ का विपर्यास है। अग्नि पंचेंद्रिय जीव को अपने प्रयोजन में पर्याप्त मात्रा में पुरुषार्थ चलता ही है, चाहे उल्टा चले चाहे उल्टा चले, तो ये उल्टा चलता है वो विपर्यास है। वही पुरुषार्थ सुनता चलना लगे तो कार्य सिद्धि हो जाती है, नहीं नहीं होती, ऐसा नहीं बनता। नहीं, तीसरा तीसरी परिस्थिति है ही यथार्थपूर्ण होने से सुनता चलेगा, इसमें कमी बेसी हो सकती है, लेकिन गति से चलते हुए फिर कमी हो तो आगे बढ़ करके वो बढ़ जाएगा, लेकिन उल्टा है उसमें उसमें तो कमी का प्रकार नहीं है। देखिए, आप जो सब कुछ करते हो उसमें आपका ध्येय कौन सा है वो बताइए, क्योंकि सभी जीव के परिणाम अपना ध्येय का ही अनुसरण करता है, और ध्येय भी दो है, तीसरा नहीं है। अनादि से संसार का ध्येय है ही, तो बदल करके मोक्ष का ध्येय होता है, प्रतिपक्ष में मोक्ष है, तो मोक्षार्थीपना होकर के पुरुषार्थ की दिशा बदल जाएगी। जहां तक हम मोक्षार्थी नहीं हुए वहां तक हमारा ध्येय संसार का होने से अनादि से होने से हमारे परिणाम, हम जो कुछ भी किया ऐसा मान दिया कैसा किया वैसा किया कैसा किया, तो सब संसारार्थ हुआ है, मोक्षार्थ नहीं हुआ है। क्या तो मोक्ष का ध्येय नहीं है, तो इसका फल संसार आएगा। संसारार्थ जो परिणाम किए, संसारार्थ जो क्रिया की, उसको हम मोक्ष के खाते में खताने जाएंगे या गिनेंगे, तो ऐसे तो कोई कार्य तो मोक्ष के दिशा में तो कोई कार्य इस प्रकार से तो होने वाला नहीं है, ऐसे थोड़ा होगा मानने से हो जाए। ये तो मार्ग है, ये ठोस वास्तविकता का मार्ग है, उसमें कल्पना थोड़ी भी नहीं चलती है, इसलिए कल्पना विहार नहीं करना है हमें। इतना किया उतना किया, 50 साल से हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, दया ज्ञान यात्रा आदि करते हैं, तो कुछ किया कि नहीं किया, संसारार्थ किया, किया सही, लेकिन मोक्षार्थ या संसारार्थ किया तो संसारार्थ किया, कि इसके फल में पुण्य फलेगा, पुण्य का फल आएगा और फिर अधोगति में जी जाएगा, पुण्य भोगते भोगते ये स्थिति हो जाएगी। हाँ, गरीब विख्यात हुआ, जबलपुर मैंने विख्यात तो था, एक बहुत बड़ी गरीब विख्यात हो गया, बुद्धिपूर्वक नया झूठा उपाय ग्रहण किया, बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया, इसलिए उसको ग्रहित विख्यात कहने में आता है। इसलिए अब हमारे आत्म कल्याण के उपाय को सोचना है या प्रारंभ करना है सोच करके विचार करके, तो उसका अनुक्रम समझना जरूरी है, वरना कोई कहीं बताएंगे, कोई क्या बताएंगे, कोई क्या बताएंगे, अपनी मिट्टी कल्पना से फिर भी बताने वाले भी मिल जाएंगे, पर हम अनिभिज्ञ है, जाने हैं, तो मानेंगे कोई अपने से तो विजय जानता है, बात तो सही होगी, हो सकती है हमारी भूल हो, फंस जाएंगे मतलब ग्रेट विचार में आ जाएंगे। इसलिए काम बहुत जिम्मेवारी का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, वरना हर ग्रेट में से ग्रेट में हो जाए चले जाएंगे और एक अपराध बढ़ जाएगा हमारा, और वो भी विचार के विषय में बढ़ जाएगा, ये बात हो जाएगी। वेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है, भावार्थ इस प्रकार है, वेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है, ग्राह्य ग्राहक रूप है, शुद्ध स्वरूप के समान निर्विकल्प नहीं है। क्या कहते हैं कि जो निर्विकल्प दशा होती है तो बुद्धि के पार की दशा है। क्या बुद्धि के स्टेज में आगे जाकर के पार करके फिर एक दशा आती है, वो निर्विकल्प दशा है। इसमें बुद्धि का व्यापार नहीं होता, निर्विकल्प दशा में बुद्धि का व्यापार नहीं होता। तो उसके पहले जो वेद ज्ञान है वो बुद्धिपूर्वक है, तो बुद्धिपूर्वक उपाय करने से बुद्धि के पार की जो दशा है वो आ जाती है। भावार्थ इस प्रकार है कि वेद विज्ञान बुद्धि पूर्वक विकल्प रूप है, विकल्प रूप में इसमें भेद है, राग है सो मैं नहीं, चैतन्य स्वरूप आत्मा है सो मैं हूं, ऐसा दो भेद है। ज्ञान और राग के बीच में बुद्धि पूर्वक बराबर भेद छांटे जाते हैं, भेद करने जाते हैं, उनके का होता है, तो भेद करते 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 निर्विकल्प दशा आती है, भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकल्प दशा आती है। भावार्थ इस प्रकार है, ग्राह्य ग्राहक इतने क्या ग्रहण करना आत्मा को, पीछे टिका था ही ना कि प्रज्ञा से आत्मा स्वरूप का ग्रहण करना, प्रज्ञा से आत्मा का ग्रहण करना, तो प्रज्ञा है वो ग्राहक है और आत्मा है सो ग्राह्य है, ग्राह्य को या उपाधेय को हम एक ही बात है। हमारा आत्मस्वरूप जो ज्ञान में आया लक्ष्य में आया वो ग्रहण करने योग्य होने से ग्राह्य है, पर हमारी प्रज्ञा से वो ग्रहण होता है इसलिए प्रज्ञा हमारी ग्राहक है। इस तरह से भेद ज्ञान बुद्धि पूर्वक चलता है, ग्राहक जो है ज्ञान की पर्याय है, प्रज्ञा श्रेणी है। और दूसरा पहलू इसमें आ जाता है कि राग है वो हे है, राग है सो है, उपाधेय है तो वो है, वो बात इसमें आ जाती है। शुद्ध स्वरूप के समान निर्विकल्प नहीं है, शुद्ध स्वरूप भी निर्विकल्प है और शुद्ध स्वरूप का स्वानुभव है वो भी निर्विकल्प है, इसलिए उपाय रूप है कि वेद ज्ञान है वो स्वरूप ग्रहण करने का उपाय है, उपाय रूप है। कैसे है सम्यक दृष्टि जीव, जो ऐसा आत्मानुभव में प्रवीण है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव कैसा है कि सावधान ही है, सावधान होकर के सावधान पड़ा से ऐसा लेना है। जीव का स्वरूप कर्म का स्वरूप उनके भिन्न भिन्न विचारने में जागरूक है, प्रमादी नहीं है। उतना भीतर में आत्म जागृति चलती है सम्यक दृष्टि को, तो जीव का स्वरूप को ग्रहण करते हैं सावधानी से, और रागादि विभाव बगल में ही चलते हैं उनको छोड़ देते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न करता है, पूरी सावधानी से भिन्न भिन्न करता है। जागृत है, जागरूक माने जागृत है, प्रमादी नहीं है। प्रमादी नहीं है मतलब कि ऐसे शुभाशुभ कार्य में परिणाम में नहीं लग जाता कि जिससे ये भेद ज्ञान की जागृति भिन्न करने की जागृति का अभाव हो जाए, ऐसा सभ्य दृष्टि को होता नहीं। अंदर में जागृत है, बराबर अपने स्वरूप को बराबर ग्रहण करते हैं अपने रूप में, और रागादि विभावों को छोड़ देते हैं, गौण कर देते हैं। जीव का स्वरूप चैतन्य, कर्म का स्वरूप रागादि विभाव, उनके भिन्न भिन्न विचार में जागृत है। विचार में ने विकल्प नहीं आ लेना, परिणम में उनके भिन्न भिन्न परिणम में बराबर जागृत है, प्रमादी नहीं है। उसमें प्रमाद नहीं करते, अंधकार में नहीं लग जाते। कैसी है प्रज्ञा छेनी? तो अभी तो भिन्न भिन्न पूर्वती, अभी तो मैंने सर्वथा प्रकार जीव को और कर्म को जुदा जुदा करती है, वो तो प्रज्ञा छेनी जीव और कर्म को सर्वथा भिन्न कर देती है। विभाव के राग के एक कण को भी, एक अंश को भी चैतन्य में आत्मा में मिलाता मिलाती नहीं, मिलने नहीं देती। ये मानसिक शांति जो होती है वो आत्म शांति नहीं होती है। मानसिक शांति वेदज्ञान के काल में उत्पन्न होती है, फिर भी वो वेदज्ञानी जीव है को तो भिन्न भिन्न करता है, मानसिक शांति को भी विभाग जानता है। उनका सावधान है, जागृत है कि कहीं भी उसको आत्मा में और कर्म में अभिन्न पड़े का कहीं भी ख्याल आता नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। कषाय कितना भी पतला हो, बहुत पतला हो जाता है, कितना भी पतला पतला हो फिर भी वो उनको भिन्न ही रखता है, उसको अभिन्न करता सम्यक दृष्टि जीव को, यानी कि भेद ज्ञानी जीव को जो मानसिक शांति साथ में चलती है उसका निषेध आता है, और जिसको आत्मिक शांति उत्पन्न नहीं हो केवल मानसिक शांति हो, उसको मानसिक शांति में आत्म शांति का भ्रम हो जाता है, तो उसके पास मानसिक शांति को भिन्न करने का कोई प्रकार नहीं बनता है। ठीक है, कोई ऐसा प्रश्न निकाले, तो हम आत्मचिंतन में बैठते हैं, आत्म ध्यान में बैठते हैं, आत्म को ध्यान भी कराते हैं, मुमुक्षु को भी ध्यान कराते ना, ध्यान मुमुक्षु को हो नहीं सकता, कर्म ध्यान मुमुक्षु को हो ही नहीं सकता। कर्म ध्यान चतुर्थ स्थान के पहले होता नहीं, चतुर्थ स्थान आता है, सम्यक दर्शन आता है, उसी वक्त पहला पहला कर्म ध्यान होता है, बाद में फिर साल हो जाता है। तो इसके पहले मुमुक्षु को ध्यान होता है कि नहीं होता है, बात दिया है 466 में, कोई ऐसा जाने कि ध्यान के प्रयोग से या योगादि से आत्मा का कल्याण होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और 335 में लिया कि जो जो सत्पुरुष को चाहता है तो ध्यानादि को नहीं इच्छता है, दो जगह ध्यान का निषेध किया है मुमुक्षु की भूमिका में। क्योंकि आजकल ध्यान का प्रयोग कराते हैं, वो आपको ध्यान कराते हैं, सुबह सुबह आ जाना, अब वो ध्यान कराएंगे, वो ध्यान नहीं होता है, ध्यान का भ्रम हो जाएगा। कल्पना से मान ले शासन कि ध्यान से कल्याण होता है या समाधि से या योग से, तीन प्रकार का प्रयोग कराते हैं, योग का, समाधि का और ध्यान का, इसका केंद्र चलता है ऐसे ऐसे प्रकार से, परंतु उससे जीव का कुछ कल्याण नहीं होता, नया क्रम पैदा होगा साधन का, उससे जीव का कुछ कल्याण नहीं होता। बहुत एक एक बात का मार्गदर्शन दिया है, वो इसमें कहीं चूक नहीं करनी चाहिए। जीव का कल्याण होना तो ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में होता है और उसे परम सत्संग में समझा जा सकता है। परम सत्संग में प्रत्यक्ष ज्ञानी का ही उसको परम सत्संग कहते हैं, उसमें वो बात समझी जाती है कि मेरा कल्याण कैसे होता है। इसलिए वैसे ध्यान के योग के विकल्प करना छोड़ देना चाहिए, इस लाइन में मत जाना, मतलब उल्टे रास्ते चढ़ जाओगे। तो कहां से नहीं आएगा, एक तो पर्याय बुद्धि है और चंचलता घटेगी, प्रयोग करने मनवचन काया के प्रयोग होते हैं, उस प्रकार के प्रयोग करने से कराने से क्या होता है, चंचलता घटती है उपयोग की, तो थोड़ी मानसिक शांति आएगी और इस मानसिक शांति में अहम बुद्धि आ जाएगी। उल्टा रास्ता पे चढ़ गया, गृह प्रख्यात में आ गया, दर्शन भोग तीव्र हो गया, तो दर्शन भोग तीव्र हो जाता है, प्रख्यात प्रबल हो जाता है। पहचानता है 335 में और जगह पर है, और ध्यान आदि की इच्छा नहीं करता है, ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय रहता है। बहुत स्पष्ट किया है, हमारा अंतरंग अभिप्राय ऐसा है कि जो ज्ञानी को पहचानता है वो ध्यान आदि की इच्छा नहीं करता, मैं ध्यान में बैठ जाऊं का निर्विकल दशा कर लू, कसम तो नहीं होता है, तो सचंद करता ही नहीं ऐसा। सत्पुरुष को वास्तविक रूप से पहचानने में आने से वो पूरा समर्पण कर देता है, आप कहेंगे मैं समय को, मुझे ध्यान आदि की कोई इच्छा नहीं है, आपकी आज्ञा है वही मेरा कर्म है, आना ही तो मेरा कोई धर्म नहीं है, तो बच जाता है, वरना वो अपनी मति कल्पना से ध्यान आदि का विचार करने लग जाता है। इससे बचना, इसमें शामिल नहीं होना, ध्यान के शिविर में नहीं जाना। हम तो कृपालु देव की आज्ञा में रहना चाहते हैं, कि पहली बात वो है, बात ये दूसरी बात बाद की है, ये हमारे लिए दीवा दांडी है, बहुत अनेक भवों का ये वचनामृत है, वो मामूली चीज नहीं है, अनेक भवों का निचोड़ है, अनेक भवों का अनुभव ज्ञान का निचोड़ है। क्या उन्होंने भी माथा बहुत मारा है पुस्तकालय के भवों में, बहुत अलग अलग प्रकार से कई प्रश्न किया है, तो बाद में उनका निचोड़ है वो निकला है इधर। तो हमें इसकी आज्ञा में रह करके जो कुछ करना है वो करना है, इसको छोड़ करके कुछ नहीं करना है। ये बात गांठ मार देनी एक जगह तक, बीस गांठ को नहीं खोलना है, ये हमारी एक गांठ नहीं खोलेंगे, इसको पकड़ करके बैठे हैं अभी तक, वरना पटक जाएंगे। क्यों? जो रास्ता नहीं जानते हैं वो अलग अलग रास्ता बता देते हैं अपनी मोटी कल्पना से, और भोले जी जैसे समझाते हैं तो नई आपत्ति खड़ी हो जाती है। तो जितना दूर जाएगा उतना ठिकाने आने में पसीना आएगा, दूर हो जाएगा। बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। और मुमुक्षु की भूमिका के सब जीवों के लिए है, इसलिए हमें उनका स्वाध्याय परिचर्यन करना चाहिए कि मुमुक्षु की योग्य भूमिका वाले जीव को ही लिखा है, हम भी मुमुक्षु हैं, तो हमको तो तैयार माल मिल गया। वरना अभी अभी हम प्रत्यक्ष परिचय करना चाहे तो कहाँ से होगा, कहाँ पूछने जाएंगे, वो तो देवलोक में विराजते हैं, कहाँ जाएंगे, हमारे तो कोई समर्थ नहीं कि अभी देवलोक में जा सके हमें अभी, तो अभी मार्गदर्शन तो रह गया, हमारे सौभाग्य से ये सब बातें रह गई, तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक एक बात में बहुत विघन है, कहीं भी एक भी आज्ञा का स्थापन, एक भी आज्ञा के विरुद्ध हमें किसी हालत में किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए हमारे, ये बात पक्की होनी चाहिए। मानसिक शांति एक प्रकार के राग के पर्याय है, पर वेद ज्ञान में उसका निषेध है। जिसको विज्ञान चलता है उसको निषेध आता है, जिसको विज्ञान नहीं होता है तो उसको आत्मशांति मान लेते हैं, तो जिसको आत्मशांति आई उसको हम पूछते हैं कि आपने निषेध किस पर्याय क्या किया है इस वक्त। मानो कि आपने आपने ऐसा समझ लिया कि मेरी आत्मशांति थी, तो उस वक्त आपने निषेध किस बात का किया तो आत्मशांति आई थी। मानसिक शांति थी उसका निषेध हुआ था, मानसिक शांति अवश्य होती है वहां, उसका निषेध हुआ या नहीं हुआ तो वो तो भेद ही नहीं कर सकता। जो मानसिक शांति को आत्मशांति जान लेता है उसको उसको तो भेद होता ही नहीं, वहां भेद पड़ता ही नहीं, तो उनको तो आत्मशांति नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ तो शांति है ही नहीं, वास्तव में वो आकुलता है, उसका निषेध इसलिए आता है कि आत्म शांति से मिलान करने से बराबर उसको पता चलता है कि ये तो आकुलता थी। तो आकुलता में तो जो सही ज्ञान वाला है वो तो धोखा खाएगा नहीं, और जिसका आकुलता का ज्ञान सही नहीं है उसमें आत्मशांति लग जाएगी, मानसिक शांति में आत्मशांति महसूस हो जाएगी। हाँ ज्यादातर दिखती नहीं है, लेकिन कोई ऐसे मंद कसाई हो निवृत्त जीवन वाला हो और बार बार प्रमुख चिंतन में बैठता हो, बार बार उसको आत्मशांति का अनुभव जैसा लगता हो, तो फिर उसको तो विचार ही नहीं आएगा टिकने नहीं टिकने का। हमारा जो पिन पॉइंट बात वो है कि आप कसाई की जाति को और आत्म जाति के परिणाम को, विभाव परिणाम की जाति को और स्वभाव परिणाम की जाति को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, और पहचान करके इसका निषेध आता है निभाव जाति का या नहीं आता है, ये देख लो। अगर ऐसा होता है तो सही रास्ते पे हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ गलत रास्ते पे हो, समझ लेना चाहिए। कैसी बात है, क्या करें? मुमुक्षु अपने परिणामों का अवलोकन करके ज्ञान से, ज्ञान वेदन से आत्म जाति को पहचाने, और रागादि अनेक प्रकार के विभाव परिणाम से विभाव जाति के परिणाम को पहचाने। ध्यान तो कहाँ से बोलेंगे उसको, जिसको चिंतन मनन नहीं बोल करके उसको वेद ज्ञान का प्रयोगात्मक अभ्यास कहें। वेद ज्ञान का प्रयोगात्मक अभ्यास को करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर सकते फिरते भी कर सकता और बैठ करके भी कर सकता, हर हालत में कर सकता है, हर हालत में कर सकता है। प्रयोग तो देह के काम में करने का तो मौका है, जैसे हम ले लें कि हमको पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो ये देह के शरीर की पर्याय है, वो कोई आत्मा की पर्याय नहीं है। तो वहां वेद ज्ञान करने का प्रयोग हम करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर करना नहीं चाहे तो पीड़ा में तन्मय हो जाएंगे, तो हर हालत में कर सकते हैं। निवृत्ति काल में भी कर सकते, निवृत्ति काल में भी कर सकते, प्रयोग तो प्रयोग है। तो वो तो स्वरूप का वेद ज्ञान होने के बाद तो स्वरूप का अनुभव होगा, सीधा कैसे स्वरूप का अनुभव होगा? ठीक है, बैठने की कोई मना नहीं है, मना तो बैठने की नहीं है, बैठ करके करो या किसी भी उदय के काल में करो, लेकिन वेद ज्ञान करो, ये करो, वेद ज्ञान तो करना चाहिए। इसमें क्या है, तकलीफ क्या है, आपका प्रश्न तो मैं और स्पष्ट करता हूँ। तो मैं राग नहीं, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा विचार विकल्प चले, चिंतन चले, सो वेद ज्ञान का स्वरूप नहीं है, समझना। इसलिए हमने चिंतन का निषेध किया और प्रयोग बोला। विकल्प चिंतन मनन एक और चीज है और प्रयोग एक दूसरी चीज है, तो हमें प्रयोग में जाना है। आपको कितना साल हुआ है प्रारंभ करते हुए? आपको इस लाइन में आए कितने साल हुए? 3-4 साल में भी प्रारंभ की बात चलती है, यहाँ तक प्रारंभ की बात करोगे? ठीक बात है, लेकिन प्रारंभ कहाँ तक रखेंगे हम? प्रारंभ में देखिए इसमें क्या तकलीफ है, आपके प्रश्न में क्या अड़चन हो सकती है, कि पहले तो ऐसा होगा, कहाँ तक? पहला 6 महीना तक 12 महीना तक 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक 4 साल तक 10 साल तक 20 साल तक कहाँ तक? हमारे बनारा जी साहब को तो पिताजी के काल में ये गुरुदेव की लाइन मिल गई है, पिताजी के काल में मिल गया ना, तो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ लेना? आपको 4 साल हो गए, उनको 40 हो गई होगी या इससे भी ज्यादा हो गई होगी, तो कहाँ तक प्रारंभ लेना? एक बात। दूसरी बात, पहले तो ये होना, ऐसा जो प्रश्न है उसमें एक भी प्रयास है कि पहले वाला कभी पीछे नहीं होता, इतना वजन चला जाता है फिर से, पहले तो ऐसा विकल्प होगा कि पहले तो ऐसा होना चाहिए, तो उसका पहले वाला पहले ही रहेगा, कभी वो पीछे होने वाला नहीं है। इसलिए पहले ऐसा होता है वो एक जानने की चीज है, व भजन देने की चीज नहीं है। बात तो ये पहले होता है वो रूप नहीं है, लेकिन हमारा भजन है तो विपर्यास है। क्या थोड़ा सुन तो बात है, भजन नहीं जाना चाहिए होता है पहले जानने की बात है, पहले तो होना चाहिए ये बात नहीं होना, उसमें भजन चला जाता है। वो पहले वाला पहले ही रहेगा, वो 50 साल भी पहले ही रहेगा, पहले तो ऐसा होना चाहिए तो होता है पहले। हम तो विकल्प में खड़े हैं, दूसरे विकल्प करते थे उस विकल्प में आए, जबकि दूसरी प्रवृत्ति में विकल्प चिंतन नहीं चले, प्रयोग चले। अकेले में बैठ जाएंगे तो हमारा चिंतन मनन चलेगा, प्रयोग चलेगा कि नहीं चलेगा अलग बात है, कहीं हम मान लेंगे कि ये विकल्प है वही प्रयोग है, ऐसा नहीं है। अब विकल्प में और प्रयोग में अंतर क्या है वो प्रश्न यहाँ उठाना चाहिए। तो चलो हम एकांत में बैठते हैं तो हमको विकल्प चलता है या हमारा प्रयोग चलता है वो कैसे मालूम पड़े। तो क्या है कि प्रयोग में प्रयोग के साधन प्रत्यक्ष होते हैं, और विकल्प में जो भी बातें हैं, जो विषय, जो विकल्प का विषय है वो परोक्ष होता है। यही अंतर है विकल्प में और प्रयोग में। फिर से कि जैसे हम ज्ञान स्वरूप ऐसा विकल्प चला, हम रागादि स्वरूप नहीं है, देहादि स्वरूप नहीं है, ऐसा फिर ज्ञान का विकल्प चला, तो वो जो विकल्प का विषय ज्ञान स्वरूप की आत्मा है, वहां ज्ञान को पकड़ करके नहीं आता है विकल्प। आत्मा कहीं रहता है, विकल्प कहीं चलता है, और रागादि में नहीं, उसमें रागादि को अनुभव करके वो बात नहीं चलती है, वो सीधा ही देखता ही नहीं है, विकल्प कर लेता है, उसको परोक्ष विकल्प के विषय को परोक्ष रखता है, थोड़ा अवलोकन कर लेना चिंतन का मनन का। और प्रयोग चलेगा तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो ज्ञान वेदन को पकड़ करके प्रयोग चलेगा। रागादि में नहीं हूं तो रागादि जो चलता है उसका चलते परिणाम का निषेध आएगा, चल गए हुए ऐसे परिणाम का निषेध नहीं करना है, चलते परिणाम का निषेध करना है। प्रयोग में प्रयोग का विषय प्रत्यक्ष है और चिंतन मनन में इसका विषय परोक्ष रह जाता है। तो चिंतन मनन भी वर्तमान में होता है, यहां तो बात वो है कि चिंतन मनन और प्रयोग में अंतर क्या है वो बात चल रही है। हाँ, ज्ञान का अवलंबन है, ज्ञान को पकड़ करके प्रयोग करता है, अपना अस्तित्व वहां पकड़ने का कोशिश होता है। हाँ, वही प्रत्यक्ष वेदन प्रत्यक्ष है, तो अनुभव को लेकर के प्रयोग चलता है, ज्ञान वेदन के अनुभव को लेकर के प्रयोग चलता है। विकल्प में वो कुछ नहीं है, विकल्प उधर चलता है, ज्ञान ज्ञान उधर चलता है, विकल्प उधर चलता है, कहां है विकल्प? एक विकल्प है, मैं तो आत्मा हूं लेकिन आत्मा कहां हूं, विकल्प उधर चलता है, आत्मा कहीं पड़ा है, विकल्प कहीं चलता है। हो विकल्प, वो विकल्पना कहो या कल्पना कहो, विकल्प मैंने विशेष कल्पना, कल्पना की विशेषता को विकल्प किया, विकल्पना कहते हैं। कैसी बात
है,
तो हम भी वो सिर्फ विकल्प में रखना नहीं चाहते। वहां जो अनुभव प्रकाशक में जो जो बातें चली है वहां भी उनका अभिप्राय कोई विकल्प में रखने का नहीं है, वो भी अनुभवी पुरुष है। लेकिन क्या है कि शास्त्र अधूरा रह गया है, इसलिए जो सूक्ष्म बातें वो कहना चाहते थे अनुभव की, वो बातें रह गई है, प्रकरण वो लिख नहीं पाए, लिख पाए उसके पहले उनका आयुष पूरा हो गया। तो जो बातें हैं उस पर से ऐसा अनुमान तो अवश्य चलता है कि वो अनुभवी पुरुष थे, बहुत कुछ जानते थे, तो कहीं कहीं जगह लिख रहे हैं कि ये बात हम आगे कहेंगे, इसके बाद आगे कहेंगे, इसके बाद हम आगे कहेंगे, कई जगह वो बात आती है। तो इसका मतलब क्या कि प्राइमा फेसी शुरू शुरू में कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, मोटी मोटी बात का प्रतिपादन करके इसकी सूक्ष्मता में वो आगे जाने वाले थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि ये ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। उसमें लिखा है सम्यक सम्मुख के अधिकार में कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। जितने तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सबको सम्यक दर्शन नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। अब हम लोग हैं वो बनिए लोग हैं। बनिए को कोई ऐसा कहे कि आप पैसा दे दो, माल हम देंगे भी और नहीं भी देंगे, कौन पैसा देगा? आप हमें आपकी रकम तो हमको दे दो, हम पैसे देंगे या दे, हम माल देंगे और नहीं भी देंगे, ऐसे कोई पैसा नहीं देने वाला। हमको अगर खातरी प्रतीति हो जाए, विश्वास आ जाए कि हम पैसे देंगे, इसके सामने हमको माल मिलने वाला है, तभी हम देंगे। तो वो बात जो है उसमें क्या सारगर्भित बात है कि जो यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनको तो सम्यक दर्शन होता है, जो यथार्थ रूप से नहीं करते हैं उनको सम्यक दर्शन कभी नहीं होता है। तो उसमें दो प्रकार बनता है। आज हम हजारों मुमुक्षु तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं, कि करते हैं, क्या सभी को प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? तो बात उन्होंने लिख दी कि होती भी है नहीं भी होती है। जब नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इसकी गहराई में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रकरण वो आगे लिखने वाले थे। अभी इसकी गहराई में जाए तो पता चल जाता है कि यदि यथार्थ रूप से तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है तो अवश्य प्राप्ति होती है, गारंटेड प्राप्ति होती है। यथार्थता रह गई, अभ्यास भले आगम अनुकूल हो, चिंतन भले आगम अनुकूल हो, लेकिन यथार्थ रूप से हुआ तो काम होने वाला नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि यथार्थता क्या है, यथार्थता क्या है? तो इसके लिए यथार्थ क्रम को समझना चाहिए कि क्या से यथार्थता चालू होती है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप ले लीजिए कि जिसको ये जो हमारे हृदय के परिणाम है उसमें आत्मकल्याण की भावना से निरसपण आया नहीं। उदय के कार्य में तो हम सारे जीवन जैसे के वैसे ही चलते रहे और साथ साथ हम साइड बिजनेस में तत्व ज्ञान का अभ्यास भी करते रहे। मेन बिजनेस तो रहा हमारा संसार के कार्यों का, साइड बिजनेस में मंदिर आएंगे घंटा दो घंटा और शास्त्र की पढ़ाई करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, फिर धर्म जाके मुंह के वो परिणाम हो जाएंगे। तो ऐसे तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को कभी सफलता नहीं होती। तो यथार्थ अभ्यास है, ज्यादा काल अभ्यास करने से आगम अनुकूल जानकारी हो जाएगी, अभ्यास आगम अनुकूल होगा, लेकिन यथार्थता चालू रहेगी। और जिसने संसार को, पूरे संसार को लात मार करके क्या जोर से किक लगानी पड़ेगी, ये कुछ नहीं है, पहला हमारा आत्मकल्याण है, पहले हम कर ले, संसार में जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, प्रतिकूलता आएगी तो आने दो, अनुकूलता चले जाएगी तो चले जाने दो, उनको आत्मकार्य पहले करना है। ये दृढ़ता इसका फल का मूल्यांकन से आती है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमको निर्वाण पर सीधा हमारा स्थान हो जाता है और चार गतियों का जन्म मरण का सभी प्रकार का संसार का दुख मिटता है। तो उसका मूल्यांकन सही होए तो उसकी मुख्यता आए बिना रह नहीं। एक पैसे की मुख्यता में सभी व्यवहार को छोड़ करके भागता है, दौड़ता है कि नहीं है? तो ये हमको तो काम है, हमारा उतना लाभ नुकसान का मामला है, हम फुर्सत नहीं है हमको आने की, हर जगह बोलते थे कि नहीं बोलिए, जमीन पूछो कहाँ है तो भाई साहब इधर है ही नहीं, कहाँ गए कि काम पे गए, उधर गए उधर गए उधर गए, होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है? के रूप में होता ही है, घर पे भी नहीं रहता। तो आदमी घर पे नहीं रहता तो दूसरा व्यवहार चलाने की बात क्या हो रही है, घर गृहस्थी का तो कोई व्यवहार नहीं चलाता। धंधा बंद करके नहीं, धंधा बंद करके नहीं, वो मैं नहीं कहता। आपको कुछ इरादा नहीं है, कुछ कुछ बाहर में कोई फेरफार नहीं करना है, अंदर में प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा। बाहर में आप कुछ नहीं कहेंगे, कोई त्याग नहीं, कोई फेरफार नहीं करना है, एक चीज को हटाने नहीं है, एक चीज को छूना भी नहीं है। अंदर में तो फेरफार करो, या तो अंदर के में तो फेरफार करते नहीं और बाहर में आदत पर करते हैं, हमने वो किया वो किया वो किया, सब कर पड़े, ऐसा नहीं करता। अंदर में फेरफार कर लेते, बाहर में कुछ फेरफार करने की जरूरत है। तो धंधा बंद करना है तो कुटुंब परिवार का त्याग करना है, तो कोई चीज का त्याग करना है। त्याग का मुख्य का गुणस्थान ही नहीं है त्याग का, अरे चतुर्थ गुणस्थान भी त्याग का नहीं है, त्याग तो पंचम गुणस्थान से चालू होता है। मनुष्यों का तो सवाल ही नहीं होता त्याग का, जब त्याग कर बैठते हैं तो वो तो अक्सर करते हैं, तो करने दो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सत्संग करो और प्रायोरिटी बदल दो, मुख्यता को बदल दो, वो हमारा आत्मकल्याण का जो भी प्रवृत्ति है वो साइड बिजनेस है, उसको मेन बिजनेस कर दो परिणाम में। पर हमारी जो सांसारिक प्रवृत्ति है उसको साइड बिजनेस कर दो परिणाम में, फिर जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। लेकिन इतनी हिम्मत है, ये हमारा सवाल है। बस तो एक दफे उतनी हिम्मत कर दो, बस पहले तो हिम्मत चाहिए। हमारा सवाल वो है कि अगर हम हमारे संसार के कार्यों को गौण करें परिणाम में, प्रवृत्ति तो जो है ड्यूटी अटेंड करे बराबर, लेकिन गौणता से परिणाम में गौणता रखे, और इस गौणता रखने से कुछ सावधानी कम हो जाएगी, हो सकती है, पर कुछ नुकसान भी आ सकता है। तो इसके लिए हमारी रवि से तैयारी है, वो हमारा सवाल है या नहीं है, हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं सकेंगे, ये सवाल है। पूछ लो अपने आप को, पूछ लो फिर आगे बढ़ो। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है। जो सुख न बचाल मिसरी नलिनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख उपायो। बाकी तो शक्ति है हमारे में, बिना किसी के अभी ही पूर्ण है, और बिना किसी अनंत काल जीवन जीता रहा और अनंत काल जिंदा रहेंगे, मरने वाले नहीं है ना, हम मरने वाले ना, हमारा अव्यवाद समूह को बाधा आने वाली ना, हमारा एक गुण कम होने वाला ना, हमारा एक प्रदेश भी कम होने वाला, अरे कम क्या, इंजरी भी होने वाली नहीं है, कम होने का तो सवाल नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए ऐसा हमारा स्वरूप है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर हमें चिंता काएगी, तो हिम्मत नहीं करते। भाव भाषण में आना चाहिए, भाव भाषण में नहीं आएंगे तो योग संज्ञा से ये तत्व ज्ञान का अभ्यास निष्फल हो जाएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बिना अवलोकन भाव भाषण हो सकता, प्रयोग से ही भाव भाषण होता है, विचार से भाव भाषण नहीं होता है। ये दो बात अलग अलग है, भाव भाषण भावभाषण की बात टोटल मुझे ने ली है, लेकिन हमारा जब वो भावभाषण का प्रकरण चलता है तो उतना ध्यान नहीं जाता है। ये भावभाषण की बात बहुत जगह लिया है, लिया था वो भी लिया था, भावभाषण की बात करी वो तो आता ही है, यानी कि बच्चों को आएगी आएगी। हाँ वही वही भावभाषण का प्रयोग है, इसके बिना भावभाषण कैसे हो सकता है,
ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये हम प्रायोरिटी आध्यात्मिकता नहीं दे रहे तभी तो नुकसान कहते हैं संसार
में, प्रायोरिटी नहीं देते
संसार में, प्रायोरिटी नहीं है फिर भी तो नुकसान कहते ही है बहुत।
वाली है वो तो फिक्स है, फिर भी हमें विश्वास नहीं है। हमारी चतुराई पे विश्वास है, भगवान के सर्वज्ञ के ज्ञान पर हमको विश्वास नहीं है और हमको धर्म पाना है समझने का। ऐसे होने वाला था और उस वक्त ऐसा अनुभव होगा कि नुकसान हमारा नहीं हुआ है, ये बड़का हुआ है, इसका दर्द हमको नहीं आएगा, इसका दर्द हमको आने वाला भी नहीं है। और जो आने वाला था अगर ऐसा नहीं किया तो उतना दर्द आएगा कि भाव मरण हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। देखो विवेक करना है अपने आप को, उसी बात में बहुत सत्ता करना।